अध्याय 50 दशवांश और दान। इब्री अर्थव्यवस्था में लोगों की आय का दसवां भाग परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किया जाता था। मूसा ने इसराइल के लिए घोषणा की, फिर भूमि की उपज का दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा का ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। और गाय बैल और भेड़ बकरियों का दशवांश अर्थात दस दस के पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। लेव्य व्यवस्था 27 आयत 30-32। लेकिन दशवांश की प्रणाली इब्रियों के साथ प्रारंभ नहीं हुई। प्राचीनतम समय से परमेश्वर ने दशवांश को स्वयं के लिए ठहराया और उसकी मांग को मान्यता और सम्मान दिया गया। अब्राहम ने सर्वोच्च परमेश्वर के याजक मलिकिसिदक को दशवांश दिया। उत्पत्ति 14 आयत 20। बेथेल में एक पलायक और निर्वासित याकूब ने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की, जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उत्पत्ति 28 आयत 22। जब इसराइलियों को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाना था, दशवांश देने की विधि को ईश्वर द्वारा अभिषिक्त नियम के रूप में दोहराया गया, जिसका पालन करने पर उनकी समृद्धि निर्भर करती थी। दशवांश और दान की प्रणाली का उद्देश्य मनुष्य के मनों को एक सत्य से प्रभावित करना था कि परमेश्वर उसके सृजन किए गए हुओं को प्राप्त प्रत्येक आशीष का स्रोत है और उसकी उदारता के उत्तम उपहारों के लिए उसके प्रति मनुष्य की कृतज्ञता देह है। वह सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। प्रेरितों के काम 17 आयत 25। भजन संहिता में लिखा है, वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के पशु मेरे हैं। हाग्गै 2 आयत 8 में लिखा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। व्यवस्था विवरण 8 आयत 18 में लिखा है, वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर ने निर्देश दिया कि इस बात की अभिस्वीकृति के लिए कि सब कुछ उसी से आता है, उसकी बहुतायत का कुछ भाग भेंट और दान के रूप में उसे लौटाया जाए, ताकि उसकी आराधना को कायम रखा जा सके। दशवांश परमेश्वर का है। यहां अभिव्यक्ति का वही तरीका प्रयोग किया गया है जो विश्राम दिन के नियम के लिए किया गया था। निर्गमन 20 आयत 10 में लिखा है, सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। परमेश्वर ने मनुष्य के समय और उसके साधनों का एक निर्दिष्ट भाग अपने लिए आरक्षित किया और कोई भी मनुष्य बिना अपराध के अपने लाभ के लिए दोनों में से किसी को भी उपयोग नहीं कर सकता है। दशवांश को केवल लेवियों के द्वारा प्रयोग में लाने को समर्पित होना था। लेवी वह गोत्र था जिसे मिलाप वाले तंबू की सेवा टहल के लिए अलग किया गया था, लेकिन यह किसी भी तरह धार्मिक प्रयोजनों के लिए योगदान की सीमा नहीं थी। मिलाप वाले तंबू का और तत्पश्चात मंदिर का पूरी तरह स्वैच्छिक दान से निर्माण किया गया और आवश्यक मरम्मत और अन्य खर्चा के लिए साधन जुटाने के लिए मूसा ने निर्देश दिया कि जितनी बार लोगों की गिनती की जाए, प्रत्येक मनुष्य पवित्र स्थान की विधि के लिए आधे शेकेल का योगदान दे। नहेम्या के समय में इस कार्य के लिए वर्ष में एक बार योगदान किया जाता था। निर्गमन 30 आयत 12-16। दूसरा राजाओं 12 आयत 4-5। दूसरा इतिहास 24 आयत 4-13। नहेम्या 10 आयत 32-33। देखे, समय समय पर परमेश्वर के लिए पाप बलि और धन्यवाद की भेंट लाते थे। यह वार्षिक उत्सवों के समय भारी संख्या में चढ़ाई जाती थी और दरिद्रों के लिए सबसे उदार प्रावधान रखा जाता था। दशवांश के आरक्षित किए जाने से पहले भी परमेश्वर के अधिकारों को स्वीकार किया जाता था। भूमि की प्रत्येक उपज का पहला फल उसके लिए पवित्र ठहराया जाता था। भेड़ के कतरे जाने पर प्राप्त पहला ऊन, गेहूं के गाहने के समय का पहला गेहूं, तेल और मदिरा का पहला भाग परमेश्वर के लिए अलग किया जाता था। इसी प्रकार सभी पशुओं के पहलौठों को अलग किया जाता था और पहलौठे पुत्र के लिए उद्धार का मूल्य चुकाया जाता था। पहले फल को पवित्र स्थान पर प्रभु के सम्मुख चढ़ाया जाता था और फिर याजकों के प्रयोग के लिए समर्पित कर दिया जाता था। इस प्रकार प्रजा को लगातार स्मरण कराया जाता था कि परमेश्वर उनके खेतों, भेड़ बकरियों और मवेशियों का वास्तविक स्वामी था। वही बीज बोने और कटाई के समय धूप और वर्षा भेजता था, और उनके पास जो कुछ भी था उसी की सृष्टि का था, और उसने उन्हें अपने द्वारा सृजित वस्तुओं का भंडारी बनाया था।
जब इज़राइली पुरुष खेतों, फलोद्यानों और अंगूरों के बाग के पहले फलों से लदे हुए पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए, परमेश्वर की अच्छाई की सार्वजनिक स्वीकृति दी गई। जब याजक ने भेंट स्वीकार की, भेंटकर्ता ने मानो यहोवा की उपस्थिति में बोल रहा हो कहा, मेरा मूल पुरुष एक आरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और उसने इज़राइल का मिस्र में पड़ाव का और उस कष्ट का वर्णन किया जिसे परमेश्वर ने बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखाकर निवारण किया, और उसने कहा, हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया है। अब हे यहोवा, देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूं। व्यवस्था विवरण 26 आयत 5 8 से 11। धार्मिक और परोपकारी प्रयोजन के लिए इब्रियों से उनकी आय के एक चौथाई भाग के योगदान की अपेक्षा की जाती थी। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मनुष्य के संसाधनों पर अधिक कर उन्हें दरिद्रता में पहुंचा देंगे, लेकिन इसके विपरीत इन अधिनियमों का निष्ठापूर्ण अनुपालन उनकी समृद्धि की एक शर्त थी। उनकी आज्ञाकारिता की शर्त पर परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे घुरकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। अन्य जातियों के लोग तुम्हें धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी 3 आयत 11। परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग होने वाली स्वैच्छिक भेंट को स्वार्थी होकर दबाकर रखने के परिणामों का प्रभावशाली उदाहरण हाग्गे भविष्यद्वक्ता के दिनों में दिया गया। बाबुल के दासत्व से लौटने के पश्चात यहूदियों ने परमेश्वर के मंदिर के पुनर्निर्माण का दायित्व लिया, लेकिन शत्रुओं के कड़े विरोध के कारण उन्होंने इस कार्य को बंद कर दिया, और एक भयंकर सूखे ने उन्हें वास्तविक दरिद्रता की स्थिति में पहुंचा दिया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि मंदिर के भवन को पूरा करना असंभव था। उन्होंने कहा, यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है, लेकिन परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता द्वारा उन्हें संदेश भेजा गया, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने चाल चलन पर ध्यान दो, तुमने बोया बहुत परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हाग्गे 1 आयत 2-6। और फिर कारण दिया गया, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ी पर और अन्न और नए दाखलधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। हाग्गे 1 आयत 9-11। जब कोई दाखरस के कंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले, तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और फफूदी और ओलों से मारा। हाग्गे 2 आयत 16-17। इन चेतावनियों से जागरूक होकर लोगों ने परमेश्वर के भवन का निर्माण फिर से आरंभ किया, और फिर परमेश्वर का आदेश उन तक पहुंचाना। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से नवे महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी। परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा।
हाग्गै 2 आयत 18-19, नीति वचन 11 आयत 24 में बुद्धिमान पुरुष कहता है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ोतरी होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी होती है। यही पाठ नए नियम में प्रेरित पौलुस ने सिखाया, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से अनुग्रह दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। दूसरा कुरंथियों 9 आयत 6-8। परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल, उसकी प्रजा, सभी पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाशवाहक बने। उसकी सार्वजनिक आराधना को कायम रखने में वे जीवित परमेश्वर की प्रभुता और अस्तित्व के प्रमाण को प्रकट कर रहे थे। परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम और उनकी स्वामी भक्ति की अभिव्यक्ति के तौर पर इस आराधना को कायम रखना उनका विशेषाधिकार था। परमेश्वर ने यह नियत किया है कि पृथ्वी पर प्रकाश और सत्य का प्रचार उन लोगों की भेंट और प्रयत्नों पर निर्भर करे जो स्वर्गीय उपहार के भागीदार हैं। वह स्वर्गदूतों को उसकी सच्चाई के प्रतिनिधि बना सकता था। वो अपनी इच्छा को ज्ञात करा सकता था, जिसे उसने अपने ही स्वर में सिने से व्यवस्था को घोषित किया था। लेकिन अपने अनंत प्रेम और बुद्धिमता में उसने मनुष्य को इस कार्य के लिए चुनकर उसके साथ सहकर्मी होने के लिए बुलाया। इज़राइल के दिनों में धर्म किया की विधियों को कायम रखने के लिए स्वैच्छिक भेंट और दशवांश की आवश्यकता होती थी। क्या इस युग में लोगों को कम देना चाहिए? जो सिद्धांत मसीह ने दिया है वो ये है कि हमारी भेंट हमें प्राप्त प्रकाश और विशेषाधिकारों के अनुपात में होना चाहिए। लूका 12 आयत 48 में लिखा है, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। अपने अनुयायियों को भेजते हुए उद्धारकर्ता ने कहा, तुमने बिना कुछ दिए पाया है, इसलिए बिना कुछ लिए मुक्त भाव से बांटो। मत्ती 10 आयत 8। जैसे हमारी आशीषों और विशेषाधिकारों में वृद्धि होती है, इन सबसे श्रेष्ठ हमारे सम्मुख परमेश्वर के तेजस्वी पुत्र का अतुल्य बलिदान है। क्या हमें उद्धार के संदेश की दूसरों तक पहुंचाने के लिए और अधिक भरपूर उपहारों द्वारा अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए? जब सुसमाचार प्रचार का काम फैलता है तो उसे जारी रखने के लिए पहले से अधिक प्रयोजनों की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण इब्री अर्थव्यवस्था के समय की तुलना में दशवांश और भेंट के नियम को और भी आग्रहपूर्ण आवश्यकता बना देते हैं। यदि अपने खजानों को मसीह विरोधी और अपवित्र तरीके अपनाकर भरने के बजाय उसके लोग अपनी स्वैच्छिक भेंटों से परमेश्वर के कार्य को कायम रखें तो परमेश्वर सम्मानित होगा और मसीह के लिए कई आत्माओं को जीता जा सकेगा। पवित्र स्थान के निर्माण के लिए साधन जुटाने की मूसा की योजना बहुत सफल रही। आग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना ही उसने वो तरीके अपनाए जो वर्तमान में कलीसियाएं प्रायः अपनाती हैं। उसने कोई महापर्व नहीं मनाया। उसने लोगों को लोकप्रिय मनोरंजन, नृत्य या रंगरलियों के दृश्यों के लिए आमंत्रित नहीं किया, ना ही परमेश्वर के पवित्र स्थान के निर्माण हेतु साधन जुटाने के लिए लोटरी या इस श्रेणी के भ्रष्ट साधन को जारी किया। परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वह इसराइलियों को अपनी भेंट लाने को आमंत्रित करे। उसे उन सभी की भेंट स्वीकार करनी थी जो हार्दिकता व स्वेच्छा से दे, और भेंटें इतनी बहुतायत से आईं कि मूसा ने लोगों को और लाने से मना किया, क्योंकि उनके द्वारा आवश्यकता से अधिक प्रदान कर दिया गया था। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके भंडारी बनाया है। जो संपत्ति उसने उनके हाथों में दी है, ये वो साधन है जो उसने सुसमाचार फैलाने के लिए मुहैया कराया है। जो स्वयं को निष्ठावान भंडारी प्रमाणित करते हैं, परमेश्वर उन्हें अधिक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपता है। परमेश्वर कहता है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। पहला शमूएल 12 आयत 30। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, और जब उसके लोग उसके लिए न कुड़कुड़ाकर और न दबाव से वरन आभारपूर्ण हृदयों से अपने भेंट और उपहार लाएं, तो उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी आशीष उन पर होगी। मलाकी 3 आयत 10 में लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मलाकी 3:10।